अध्याय किसने कहा था तुम्हें आने को। स्थान अखिल का फार्म हाउस, वही कमरा। समय रात 3:12 AM। कमरे में हल्की पीली रोशनी अब भी जल रही थी। वो उतनी ही धीमी थी जितना वो स्पर्श जो रैना की उंगलियों से अखिल की छाती पर बह रहा था। अखिल और रैना एक ही चादर में लिपटे हुए, शरीर एक दूसरे से पूरी तरह सटे हुए, सांसें उलझी हुईं और एक शांत सी थकान उनके चेहरों पर पसरी हुई। रैना की उंगलियां धीरे धीरे अखिल की छाती पर हल्के से मंडरा रही थीं, जैसे किसी पुरानी कहानी के अक्षर छू रही हों। उसकी आंखें अब भी आधी खुली थीं, मगर भावनाओं से पूरी भरी हुईं। अखिल ने एक लंबी सांस ली, उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में कैद किया और कहा, एक बात पूछूं? रैना ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। कहो, उसने कहा। अखिल की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, उसका चेहरा अब कुछ गंभीर सा लगने लगा। तुम्हें मेरी जिंदगी में आने के लिए किसने कहा था? उसका स्वर बेहद सधा हुआ था, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जख्म की खरूंच थी। रैना अचानक ठिठक गई, उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं, जैसे किसी पुराने पन्ने पर अटक गई हों। क्या मतलब? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, पर उसकी आंखों में हल्का सा डर था। मतलब ये कि अखिल अब थोड़ा उठ बैठा, चादर अब भी उसके कंधों तक थी। जिस दिन तुमने पहली बार वो मीडिया वगैरह में वो कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, वो इंटरव्यू, वो क्लिपिंग्स, सब कुछ, वो झूठी बात, वो किसने करने को कहा था? रैना कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही। वो उठी नहीं, बस चादर में लिपटी हुई उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही, जैसे कोई अपनी गलती को छिपाना चाहता हो मगर उसका वजन महसूस कर रहा हो। तुमने आज तक कभी नहीं बताया, अखिल की आवाज अब थोड़ी सख्त हो रही थी। क्यों, क्यों छिपाया अब तक? किसी ने नाम लेकर कहा था ये सब करो? आज मैं जानना चाहता हूं। रैना अब भी चुप थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी जगह से थोड़ा उठी और अखिल के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अगर मैं बताना भी चाहूं, रैना की आवाज टूटी हुई थी, तो भी नहीं बता सकती। क्यों? अखिल की आंखें अब उससे हट नहीं रही थीं। क्योंकि जिसके कहने पर मैंने वो सब किया। रैना की आंखों से एक बूंद आंसू बह निकली। अगर मैंने उसका नाम लिया तो तुम मुझ पर कभी यकीन नहीं करोगे। अखिल की आंखें फैल गईं, उसका दिल जैसे अचानक किसी भारी चीज के नीचे आ गया हो। नहीं, तुम बताओ, यकीन करना या ना करना वो मेरी मर्जी होगी, लेकिन सच जानना मेरा हक है। रैना ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, उसके होंठ कांपे और फिर वो नाम निकला, अर्जुन। कमरे में जैसे अचानक किसी ने हवा बंद कर दी हो। अखिल के होंठों पर एक शब्द नहीं था, वो बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखें, उसके आंसू, उसकी कांपती आवाज, सब कुछ जैसे सच लग रहा था, पर उसका दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। नहीं, अखिल फुसफुसाया और एकदम से उठकर बैठ गया। चादर उसके शरीर से थोड़ा सरकी, मगर वो बेपरवाह था। पर भैया क्यों? उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकावट थी, जैसे किसी ने अचानक उसकी रीढ़ से सारी ऊर्जा खींच ली हो। रैना भी अब बैठ गई। वो उसके पास आई और उसकी पीठ पर हाथ रखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, उसने धीमे से कहा, बस इतना समझ पाई कि शायद उन्हें जलन है तुमसे। जलन? अखिल ने खुद से पूछा, क्यों? क्योंकि, रैना ने आंखें मूंद ली, क्योंकि तुम्हें फैमिली ज्यादा बेहतर समझती है। सारी जिम्मेदारियां, सारे फैसले, बिजनेस तक, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिए गए। शायद उन्हें लगा कि तुम उनसे ज्यादा खास हो गए और वो कहीं पीछे छूट गए। अखिल अब भी बिना कुछ कहे बैठा रहा। उसके भीतर जैसे बहुत कुछ चल रहा था। भरोसे का एक बड़ा पहाड़ अचानक से चटक गया था। वो अर्जुन, जिसके साथ वो बचपन में क्रिकेट खेला करता था, जिसके साथ हर दिवाली पर एक ही रॉकेट बांधता था, वही अर्जुन। और तुम? अखिल ने धीरे से पूछा। मैं? रैना की आवाज अब टूटी सी थी। तुम क्यों मान गई ये सब करने को? अखिल की आंखों में अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ जानने की चाह थी, जैसे उसे सब कुछ समझ में आ जाए बस एक बार। रैना ने उसकी उंगलियां थामी। क्योंकि तब मैं टूटी हुई थी, अकेली थी और पापा का इलाज। मुझे लगा मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। और अर्जुन ने जब कहा कि बस एक छोटा सा फेवर है, तो मैंने कर दिया बिना सोचे कि इससे क्या टूटेगा। अखिल ने उसकी तरफ देखा बहुत देर तक, एकटक, फिर उसके माथे पर एक किस रखा। ये रिश्ता झूठ से शुरू हुआ और एक रोज टूट गया। उसने धीरे से कहा, अब मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं तुम्हें उसी भरोसे से देख सकता हूं? रैना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वो बस चुप रही, पर उसका चेहरा कह रहा था, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कमरे की चुप्पी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां प्रेम था पर चोट भी, जहां नजदीकियां थी पर फासले भी, और वो दोनों उसी चादर में लिपटे हुए, एक दूसरे से सटे हुए, अब फिर एक बार एक सच के किनारे खड़े थे।